अथर्ववेदीय मंत्र भाग के मुंडक उपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस मंत्र के इस उपनिषद के चतुर्थ मंत्र का विचार हो गया है। तृतीय मंत्र में ब्रह्म जिज्ञासु ऋषि शौनक अपनी ब्रह्म जिज्ञासा को शांत करने के लिए आचार्य अंगिरा जी के पास जाकर के उन्हें प्रसन्न चित्त देख करके एक प्रश्न किए कि कौन सी वस्तु है जिसे जानने से जानने वाला सर्वज्ञ हो जाता है, फिर उसे जानने योग्य कुछ रहता ही नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आचार्य अंगिरा जी ने देना चतुर्थ प्रश्न से प्रारंभ किया, चतुर्थ मंत्र से सीधा। उस प्रश्न का उत्तर यह वस्तु है जिसे जानने से सर्वज्ञ होता है, ये बताना चाहिए था, लेकिन इसे बताने से पहले विद्या के दो भेद जो वेदार्थ को जानने वाले शिष्ट लोग हैं उनके द्वारा कहे जाने वाले आचार्य अंगिरा जी बताते हैं कि द्वे विद्ये वेदितव्य, दो विद्याएं हैं जिन्हें वेदों से जाना जाता है, जानने योग्य है अर्थात प्राप्तव्य है। उनमें से एक विद्या है अनुष्ठेय रूपा और दूसरी विद्या है केवल ज्ञान रूपा, सिद्ध है। जो अनुष्ठेय विद्या है उसका नाम है अपरा विद्या और ज्ञान रूपा विद्या है पराविद्या। अपराविद्या के अवान्तर दो भेद कर्म और उपासना रूप है। अनुष्ठेय अर्थ उसे कहा जाता है जो साधक के प्रयत्न से निष्पन्न होता है। तो अपराविद्या शब्दित जो कर्म है इसे वेदों के अनुसार जानने मात्र से कर्म निष्पन्न नहीं होता, कर्म के स्वरूप का ज्ञान मात्र होता है और ज्ञान होने मात्र से वेदों से कर्म का स्वरूप जानने मात्र से कर्म का फल प्राप्त नहीं होता। उस अनुष्ठेय साधन का वेदों से ज्ञान प्राप्त करके फिर अनुष्ठान करना पड़ता है। तो अनुष्ठान है जो अग्निहोत्रादि कर्म है, शास्त्र ने जैसे कर्तव्य कर्म करने के लिए बताए हैं नित्य नैमित्तिक सकाम, उनका अनुष्ठान करते रहना, ये विधि के विषय हैं। शास्त्र जिनको करने के लिए कह रहा है उन्हें धर्म कहा जाता है और धर्म है एक अपरा विद्या का ही भाग और दूसरा है उपासना। इसलिए गीता के पहले छह अध्यायों में पहले षटका में कर्म को बताया है ना, अर्जुन को भगवान कई बार कहते हैं कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, तुम कर्म करो, नहीं शरीर यात्रा पीतते न प्रसिद्धेत कर्मण। जो जीवन यापन है वो भी नहीं हो पाएगा बिना कर्म किए, उसके लिए कर्म करना ही होता है। तो शास्त्र जो बताता है वह करते रहना, शास्त्र ने जैसा करने के लिए बताया, माना जाता है अपरा विद्या अंतःपाती कर्म का अनुष्ठान हो रहा है। वो अनुष्ठान दो प्रकार से किया जाता है, उसके प्रेरक को लेकर के शास्त्र ने बताए हुए कर्तव्य का करना कर्ता के द्वारा। एक तो जो लौकिक फल है कर्म का, उस फल की प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित होकर के किया जाता है तो सकाम माना जाता है। उस सकाम कर्मानुष्ठान का फल इतना ही होता है कि जिस लोकांतःपाती फल के लिए कर्म कर्ता कर रहा है वह फल कर्म दे देता है, समाप्त हो जाता है। और एक होता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्र ने बताए हुए कर्तव्य का अनुष्ठान, ज्ञान का अधिकारी बनने के लिए कर्म का अनुष्ठान, योगारूढ़ होने के लिए कर्म का अनुष्ठान कर रहा है। अभी योग आरुरुक्षु है तो गीता ने बताया कि जो योग आरुरुक्षु है उसे योगारोहण के लिए साधन कर्म है, तो कर्म करेगा। वो योगारोहण के लिए कर्म करने का अर्थ ही है निष्काम कर्म करना। ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है चित्त का शुद्ध होना, चित्त शुद्धि के लिए निष्काम कर्म का फल है चित्त शुद्धि द्वारा अनित्य संसार के प्रति वैराग्य। निष्काम कर्म चित्त को शुद्ध करेगा, नित्यानित्य वस्तु विवेक का उदय होगा और अनित्यत्वेन रूपेण निश्चित संसार के प्रति वैराग्य होगा। तो कर्म का प्रयोजन संपन्न हुआ, जिसके चित्त में पूर्ण वैराग्य है उसे माना जाता है कृतकर्मा हो गया। अपरा विद्यांतपाती कर्म रूपी साधन का अनुष्ठान उसने पूर्ण कर लिया। जब तक निष्काम भाव से अपरा विद्यांतपाती शास्त्रविहित कर्म का अनुष्ठान नहीं होता तब तक वैराग्य ही नहीं होता है। ये वैराग्य रूपी फल निश्चायक है कि इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्मों में निष्काम कर्मानुष्ठान किया है साधक ने, तभी चित्त शुद्ध हुआ, नित्यानित्य वस्तु विवेक हुआ, वैराग्य हुआ। वैराग्यवान को कहा जाता है योगारूढ़, और उस योगारूढ़ का साधन है पर विद्या। योगारूढ़ का मुख्य उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, मुमुक्षु को योगारूढ़ कहा जाता है। साधन चतुष्टय संपन्न हुआ उसमें एक मुमुक्षा भी आ गई ना। वो योगारूढ़ कौन है? जो केवल मोक्ष चाहता है, परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहता है, उसे गीता ने योगारूढ़ कहा है। फिर उस परमात्मा की प्राप्ति के साधन है मोक्ष की इच्छा पूर्ण होती है ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार से। वो ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार को कहा जा रहा है पराविद्या, और पराविद्या का साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन। और श्रवण मनन निधिध्यासन विक्षिप्त चित्त से नहीं होता। एक घंटा डेढ़ घंटा वेदांत श्रवण वह व्यक्ति नहीं कर सकता जिसका चित्त विक्षिप्त है, अशुद्ध है, मलिन है, संसार के विषयों के प्रति आकर्षित है, संसार के पदार्थों के विषय में राग द्वेष युक्त चित्त है जिस व्यक्ति का, वह व्यक्ति शांति से बैठ करके वेदांत विचार नहीं कर सकता। खाली या हॉल में आकर के बैठना इतना मात्र श्रवण नहीं कहलाता। श्रवण का अर्थ होता है जिस ग्रंथ पर प्रवचन हो रहा है उसे अच्छी तरह से ग्रंथ का तात्पर्य अवधारण अनुकूल विचार करना, सुनना ठीक से, और फिर सुनने के बाद जो कुछ शंकाएं आती हैं उसे दूर करने के लिए पूछना, उसका मनन भी करना, ये श्रवण माना जाता है। कि जिस विषय का प्रवचन सुन रहे हैं उस ग्रंथ में यही बात बताई है, ऐसा अवधारण हो जाए, निश्चय हो जाए, जिसके करने से उसे श्रवण कहा जाता है। और उस श्रवण से जो चित्त में पर विद्या की प्राप्ति में प्रतिबंधक प्रमाण विषयक संशय विपर्य नाम के दोष होते हैं, कोई भी साधन हमेशा नहीं किया जाता। जब तक उस साधन का शास्त्र ने बताया हुआ फल है, वह फल हमारे जीवन में उपलब्ध नहीं होता, तभी तक वह साधन हमारे लिए अनुष्ठेय है। और उस साधन का जो फल शास्त्र ने बताया है उसी की प्राप्ति के लिए हम साधन कर रहे थे, वो साध्य मिल गया, तो फिर साधन का अनुष्ठान करते रहने की आवश्यकता नहीं होती है, वो साधन छोड़ दिया जाता है। फिर कोई दूसरा प्रतिबंध जीवन में है तो उस प्रतिबंध को हटाने के लिए दूसरा साधन जो शास्त्र ने बताया उसे अपनाना होता है, उत्तरोत्तर साधन को। दिल्ली जाना है तो अपने घर से घर में तो विमान आएगा नहीं आपको कि चलो यहां से एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, या तो अपनी गाड़ी से या तो टैक्सी से, वो भी जहां तक निश्चित है वहां जाकर के छोड़नी पड़ेगी। फिर बोर्डिंग पास आदि लेकर के जहां विमान में बैठना है वहां तक पहुंचने के लिए अंदर की गाड़ी आएगी एयरलाइंस की, उसमें भी बैठना पड़ेगा आपको। अपनी गाड़ी छोड़ दी, फिर वो गाड़ी पकड़ ली, वहां से भी उतर गए, जो निश्चित सीट है वहां जाकर के बैठ गए, और वहां से दिल्ली पहुंचने के बाद बैठे नहीं रहते, उतर जाते हैं। तो ये साधन है, घर में कमरे से निकल करके अपनी गाड़ी में नहीं बैठते तो दिल्ली न पहुंचते, लेकिन गाड़ी में बैठने मात्र से नहीं पहुंचे हैं, उसको भी छोड़ा, और दूसरी बस में बैठे फिर उसको भी छोड़ा, विमान में बैठे और उसको भी छोड़ा, बाहर निकल करके जो आपको रिसीव करने के लिए गाड़ी आई है उस गाड़ी में बैठ करके दिल्ली में जहां पहुंचना है वहां पहुंच गए, तब गंतव्य में पहुंचे, कहीं एक बीच में साधनों को अपनाया ना। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति रूप जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होगी ब्रह्म साक्षात्कार से, पराविद्या से, और इस पराविद्या की प्राप्ति के अनेक साधन हैं। ब्रह्म सूत्र में व्यास जी ने ब्रह्म ज्ञान के लिए कहा कि सर्वापेक्षा च, यानी सारे साधनों की ब्रह्म ज्ञान के लिए अपेक्षा है, पराविद्या के लिए अपेक्षा है। बहिरंग साधनों की भी अंतरंग साधनों की भी। बहिरंग साधन है कर्म उपासना जो अपरा विद्या यहां पर के रूप में कहा गया वो बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन। बहिरंग साधन का प्रयोजन है साधन चतुष्टय से संपन्न आपको करना। आप साधन चतुष्टय से संपन्न हो गए का मतलब एयरपोर्ट पहुंच गए तो अंदर आप अपनी गाड़ी से उतर करके गाड़ी को छोड़ देते हैं और वहां बोर्डिंग पास ले करके अंदर गए तो फिर बाहर मिलने के लिए भी किसी से या तो अनुमति लेकर के आओ नहीं तो नहीं आ सकते। अब उनके अधीन हो गया, बाहर का साधन छूट गया, बाहर से संबंध आपका छूट गया और वो आप छोड़ते हैं लाइन में लग करके छोड़ते हैं और जल्दी चाहते हैं छूट जाने तो विमान निकल जाएगा, ट्रैफिक वगैरह में अटक जाए गाड़ी, तो किसी न किसी दूसरे मार्ग को खोजते हैं कि वहां पहुंच जाए, इस गाड़ी को जल्दी छोड़ना पड़े। ऐसे ही साधन चतुष्टय संपन्न हो गए तो छूट गया। फिर अंतरंग साधन ब्रह्म विद्या के लिए अपेक्षित है श्रवण मनन निधिध्यासन और इन साधनों से भी अलग अलग जो ब्रह्म साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष है वो निवृत्त होता है। श्रवण से अंतकरणगत प्रमाण विषयक संशय और विपर्य नाम का जो दोष है वो दूर होता है। मनन से प्रमेय विषयक संशय की निवृत्ति होती है और निधिध्यासन से प्रमेय विषयक विपर्य नाम का जो दोष है वो दूर होता है। और ये सारे दोष दूर होने के बाद ही, इन सारे दोषों से चित्त रहित होने के बाद ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हो पाता है, पराविद्या का उदय होता है। खाली उपनिषदों के अध्ययन से मात्र अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार नहीं होगा इन दोषों के रहते हुए, इन दोषों को हटाना होता है। इसलिए उपनिषदें इन दोषों को हटाने के साधन बताती है। ये जितने भी साधन हैं वो सब करते क्या है कि जो एक एक आवरण है बुद्धि में, उन बुद्धिस्त आवरणों को मात्र हटाते हैं। कर्म ने मल नाम का जो दोष है वो हटाया, विक्षेप नाम का दोष उपासना ने हटाया। इसलिए निष्काम अपरा विद्या के अनुष्ठान का फल है आपके चित्तगत मल विक्षेप नामक दोष को हटाना, उनसे रहित करना। तो मल विक्षेप जाने के बाद सर्वथा चित्त निर्दोष होता है ऐसा नहीं है, उसके बाद भी और कई दोष रहते हैं चित्त में। उन दोषों को हटाने के लिए फिर अपरा विद्या से भी अंतरंग जो साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन ये करने होते हैं जो बताएं, प्रमाण विषयक संशय विपर्य, प्रमेय विषयक संशय विपर्य, इनको भी हटाने की आवश्यकता होती है। ये सारे साधन इन दोषों को जब हटाते हैं तो तत्त्वमसी इत्यादि उपनिषद वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि बोध होता है, इसे पराविद्या कहा जाता है। और ये पराविद्या भी आपको परमात्मा से मिलाती नहीं है, परमात्मा से आप बिछड़े हुए होंगे तब तो परमात्मा से मिलाया जाएगा। बिछड़े हैं क्या? परमात्मा रूप ही है, लेकिन भ्रांति हो गई कि हम परमात्मा से अलग हैं। ये भ्रांति जिस अज्ञान के कारण हुई है उस अज्ञान को कहा जाता है आवरण नाम का दोष। उस अज्ञान को मात्र हटाती है, वो भी दोष है। ये कार्य अविद्या कारण अविद्या को भी दोष ही माना गया है और इस दोष को निवृत्त करती है पराविद्या। और जब इन पराविद्या तक के साधनों से जितने भी दोष थे वो सब निकल गए तो आपको ये नहीं लगेगा कि हम किसी से मिले हैं, किसी से बिछुड़े हुए थे, लेकिन ये लगेगा कि हम तो कभी भी अलग हुए ही नहीं थे, हम इसी रूप में हमेशा हैं। ब्रह्मज्ञान का फल ये नहीं होता कि इस समय मैं ब्रह्म हूं, पहले ब्रह्म नहीं था। जब प्रकाश में रस्सी का ज्ञान होता है तो प्रकाश होने पर, अंधकार मिटने पर आपको वो ज्ञान ये बताएगा कि जिस समय मंद अंधकार में सर्प दिख रहा था उस समय भी ये रस्सी ही थी, हमेशा वो रस्सी ही है, सर्प की तो भ्रांति थी। ऐसे जीव भाव की तो भ्रांति थी और मैं तो हमेशा यही था, पहले भी था, अभी भी हूं और भविष्य में भी रहूंगा। हम दोनों को कभी कोई अलग कर ही नहीं सकता, एक ही है, हमारा स्वरूप ही है। स्वरूप उसी को कहते हैं जो कभी भी आपसे अलग ना हो, जो कभी आपके साथ रहें कभी आपसे अलग होकर के भी रहें, उसे स्वरूप नहीं कहा जाता। देहादि जागृत में रहते हैं और सुसुप्ति में साथ छोड़ देते हैं, इसलिए वो हमारा स्वरूप नहीं हो सकता। लेकिन चैतन्य चिद्रूपता वो आप चाहोगे छोड़ना तब भी छूट नहीं सकता, क्योंकि वो स्वरूप है। स्वरूप उसी को कहा जाता है जो कभी वस्तु से अलग ना हो, वही स्वरूप होता है। आपसे अपनी ब्रह्म रूपता को कोई अलग नहीं कर सकता। ब्रह्म सर्वसमर्थ है, ईश्वर सर्वसमर्थ है, लेकिन उसका भी यहां सामर्थ्य नहीं चल सकता कि आपको वस्तुतः ब्रह्म से अलग कर दे, तब तो ब्रह्म हमारा स्वरूप ही नहीं होगा। इसलिए ईश्वर भी इस विषय में असमर्थ है ये माना जाएगा। किस विषय में? आपको, आप ब्रह्म नहीं हैं, ब्रह्म से वस्तुतः ही अलग हो, ऐसा करने में, आपका और ब्रह्म का भेद करने में ईश्वर भी समर्थ नहीं है, असमर्थ है। का मतलब ये है कि जो जैसा है वैसा ही ईश्वर उसे रखता है ना, यही ईश्वर की ईश्वरता है कि कभी किसी भी पदार्थ को उसकी मर्यादा से बाहर नहीं जाने देता, समुद्र को समुद्र की मर्यादा से बाहर नहीं होने देता, मर्यादित रखता है। और पृथ्वी को कभी रसातल में नहीं पहुंचने देता, यही ईश्वर की ईश्वरता है, अंतर्यामिता है। ऐसे आपका हमारा सबका ब्रह्म स्वरूप है तो हमसे कभी भी उसे अलग नहीं होने देता। वो भ्रांति हो जाए तो स्वप्न में जैसे अपने घर में सुरक्षित होने पर भी देख रहे हैं कहीं तूफान में फंस गए हैं और बड़े कष्ट पा रहे हैं, वो वस्तु का कष्ट थोड़ी पा रहे हैं, उस समय भी आप सुरक्षित ही हैं। ऐसे नित्य मुक्त ब्रह्म रूप ही हमेशा है हम। ये कब होगा? जब पराविद्या भी आपके जीवन में आएगी और पराविद्या से निवर्त्य जो अविद्या नाम का दोष है वह निवृत्त होगा। तो फिर नित्य जो ब्रह्म है वह अभिव्यक्त होगा, यही पराविद्या का प्रयोजन है। वो बताए ब्रह्मज्ञानी की अनुभूति रहेगी कि मैं हमेशा ऐसा ही हूं, कभी भी मुझे संसार ने स्पर्श ही नहीं किया। ब्रह्म अविद्या अवस्था में संश्लिष्ट हो और अविद्या निवृत्त होने के बाद असंश्लिष्ट होता हो ऐसा नहीं। संश्लिष्टता की ब्रह्म के तो भ्रांति है। संश्लिष्टता का मतलब ससंगता, संबंधिता। ब्रह्म कभी किसी का न संबंधी हुआ। ब्रह्म याने आप, आत्मा। आत्मा ने वस्तुतः कभी किसी से संग किया ही नहीं है। संग तो दो समान सत्ता पदार्थों में होता है ना, तो आत्मा की सत्ता के तरह सत्तावान दूसरा कोई पदार्थ होगा तब तो आत्मा का उसके साथ संबंध बनेगा। आत्मा की है पारमार्थिक सत्ता और अविद्यादि सारे संसार की है व्यावहारिक सत्ता। ये अलग अलग सत्ता वाले होने से इनका वास्तविक संबंध नहीं बनेगा और यदि संबंध दिखता है तो भ्रांति से होगा। भ्रांति से हुआ संबंध वास्तविक असंगता को असंश्लिष्टता को किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाएगा, उसका विरोधी नहीं होगा। इसलिए व्यावहारिक ससंगता और पारमार्थिक असंगता का कोई आपस में विरोध नहीं है। जैसे वास्तविक रस्सी का और कल्पित सर्प का आपस में कोई विरोध नहीं है, उल्टी वास्तविक रस्सी भ्रांति काल में काल्पनिक सर्प को जब तक भ्रांति है तब तक सत्ता देती है। यदि रस्सी ना हो तो प्रातिभाषिक सर्प की प्रतीति ही ना हो, उसे प्रातिभाषिक सत्ता मिल रही है अधिष्ठान से ही, इसलिए उनका कोई विरोध नहीं है। यदि सर्प ये आग्रह करने लगे कि रस्सी की तरह ही मैं भी पारमार्थिक हूं तो फिर उसका विरोध है। उसमें रस्सी के तरह वास्तविक अपने को अध्यस्त सर्प समझने लगे तो रस्सी का ज्ञान करता है, उसको अपनी हैसियत दिखा देता है कि फिर चले जाओ। जैसे रस्सी का ज्ञान होता है तो सर्प चला जाता है, ये हैसियत दिखाना हुआ कि तुम तो ऐसे हो, ज्ञान मात्र से निवृत्त होने वाले हो, रस्सी के अज्ञान से रस्सी में टिके हुए हो, जब तक अज्ञान है तभी तक है। तो इस प्रकार ये पराविद्या और अपराविद्या दो विद्याएं बताई है ना। चौथे मंत्र में तो खाली प्रतिज्ञा नाम मात्र से हुई, इसे उद्देश्य ग्रंथ कहा जाता है। पराविद्या अपरा विद्या ऐसा नाम मात्र से कथन करने का नाम है उद्देश्य। शास्त्रकारों ने उद्देश्य, एक उद्देश्य शब्द आता है उद्देश्य, एक होता है एक उद्देश्य। उद्देश्य शब्द का तो अर्थ होता है नाम मात्रेन वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, नाम मात्र से किसी का परिचय देना, ये हुआ उद्देश्य। और उद्देश्य वो होता है लक्ष्य, लक्ष्य के लिए भी उद्देश्य शब्द है, ये मेरा उद्देश्य है यानी लक्ष्य है, यह रहता है। तो वो उद्देश्य यानी लक्ष्य और उद्देश्य यानी परिचय देना, और परिचय भी बहुत विस्तार से देना नहीं, नाम मात्र से ये हैं ऐसे नाम से परिचय करा देना, और बाकी फिर विस्तार से उनकी सारी विशेषताओं का वर्णन करना, ये हुआ वो लक्षण, उसे लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। और केवल नाम मात्र से परिचय कराने को उद्देश्य कहते हैं। तो अंगिरा जी ने चौथे मंत्र के उत्तरार्ध में दो विद्याओं का उद्देश्य कर दिया, का मात्र नाम बता करके अध्येताओं को परिचय करा दिया कि एक अपरा विद्या है, एक परा विद्या है। ऐसी नाम सुनने के बाद जिसका नाम है उसके विशेष स्वरूप को जानने की जिज्ञासा होगी तो फिर विशेष स्वरूप का वर्णन किया जाता है। और सामने वाले को नाम सुनकर के कोई जिज्ञासा ही नहीं हुई तो फिर बताने की जरूरत भी नहीं है। ये कहा जाता है ना पृष्टम कस्यचित ब्रुयात, यानी किसी को भी बिना पूछे कुछ मत बताओ। सामने वाले को जिज्ञासा हो इस अर्थ को बताओ, ये नहीं कि हम ये जानते हैं तो सामने वाला सुनना भी नहीं चाहता है तब भी सुनाते जाओ, ये नहीं। सामने वाले की जिज्ञासा को देख करके उसे पूरा करने के लिए ज्ञाता को चाहिए कि जरूर बताएं। तो उद्देश्य सुन करके जब नामार्थ की जिज्ञासा हो जाए विशेष रूप को जानने की तो लक्षण ग्रंथ प्रारंभ होता है। तो शौनक जी को जिज्ञासा हुई कि अपरा विद्या क्या है, परा विद्या कौन सी है, ये जानने की फिर जिज्ञासा हुई तो दोनों विद्याओं का फिर लक्षण बता रहे हैं, कौन किसको अपरा विद्या कहा जाता है, किसको परा विद्या कहा जाता है, ये स्पष्ट कर रहे हैं पंचम मंत्र में। तो पंचम मंत्र है कि तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेद साम वेदो अथर्वण वेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। तो इसमें जो पहला शब्द है तत्र, इसका अर्थ है जो हमने नाम मात्र से दो विद्याएं बताई हैं उन दो विद्याओं में से, ये तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा, तयो विद्यो उन दो विद्याओं में से जो अपरा विद्या है वो अपरा विद्या को जानना चाहते हो तो अपरा विद्या ये है। कहां तक तो ज्योतिषम इति, यहां पर जो इति शब्द है वो अपरा विद्या के समाप्ति का द्योतक है। अपरा विद्या कौन है तो यहां बताया चारों वेदों को, चार वेद कौन कौन है तो उन चारों वेदों के नाम बताए, ऋग्वेद यजुर्वेद साम वेद अथर्व वेद। तो ये चार वेद हुए, इन चारों वेदों को अपरा विद्या कहा जा रहा है। अंगिरा ऋषि कह रहे हैं ये अपरा विद्याएं हैं और केवल चार वेद ही नहीं, चार वेदों के छह अंग हुआ करते हैं, इसलिए कहा जाता है षडंग वेद हैं। वे छह अंग हैं वेदों के, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष, ये कहलाता है छह अंग। तो शिक्षा एक अंग है, शिक्षा शब्द से लेना पाणिनीय शिक्षादि, याज्ञवल्क्य जी की ऋषियों ने वेद तो शब्द राशि है ना, वेद का अर्थ है वह अपौरुषेय शब्द राशि जो प्रतिकल्प में कल्प के प्रारंभ में ईश्वर अपनी प्रथम संतान ब्रह्मा जी को प्रदान करता है, उस शब्द राशि को, राशि का अर्थ होता है समूह, उस शब्द समूह को कहा जाता है वेद। और शब्द का स्वरूप दो प्रकार का होता है, एक ध्वन्यात्मक शब्द और दूसरा वर्णात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक वर्णात्मक दो प्रकार का शब्द होता है और शब्द का मुख्य स्वरूप है ध्वनि। ध्वनि ये मुख्य माना जाता है शब्द का, और वर्ण को तो प्रतीक माना जाता है, जो लिपि होती है ना लिपि, वो वर्ण है। या वर्ण शब्द से लेना अक्षर जो लिखे जाते हैं, और लिपि अनेकों प्रकार की होती है। देवनागरी में आकार को जैसे लिखा जाएगा, गुजराती में बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं लिखा जाएगा, वो लिपि में बदल जाता है, वो प्रतीक है। तो प्रतीक तो बदल भी सकता है, प्रतीक शब्द का अर्थ होता है स्मारक, एक स्मरणीय धातु से वो बनता है, तो इसका अर्थ होता है कि स्मरण कराने वाला, जिसको देख करके आपको किसी की याद आ जाए तो उसको कहा जाएगा, जिसको आप याद कर रहे हैं किसी को देख करके, तो जिसको देख करके याद कर रहे हैं वो हुआ प्रतीक। चित्र है, मूर्ति है, वो प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए प्रतीक उपासना आती है अपने यहां। तो ये लिपि रूप जो वर्णात्मक अक्षरात्मक शब्द हैं उन्हें कहा जाता है क्या, प्रतीक, और मुख्य है ध्वन्यात्मक शब्द। तो अलग अलग भाषा में लिपि में अ को अलग अलग लिखने पर भी उच्चारण तो अ का अ ही होगा, अ ऐसा ही ध्वनि निकलेगा, इसलिए इसे माना गया ध्वनि को ही शब्द का मुख्य स्वरूप। और ये लिपि तो बहुत बाद में प्रकट हुई, और फिर ग्रंथ का रूप तो बाद में धारण कर लिया, पहले तो हाथ से ही लिखना शुरू कर दिया भोजपत्र आदि में लोगों ने। और ये कब, जैसे जैसे संसार में त्रिगुणात्मक पदार्थों का बुद्धि के साथ ज्यादा संबंध हुआ, बुद्धि इन पदार्थों से ज्यादा जुड़ गई, तो संसार के साथ जितनी ज्यादा से ज्यादा जुड़ती जाएगी उतनी ही स्थूल होती है, और जितनी बुद्धि स्थूल होती जाएगी उतनी ही वह याद कम रखती है, मेधा शक्ति उसकी कम होती है। बुद्धि में कई एक प्रकार की शक्ति होती है, उसमें एक मेधा शक्ति होती है, मेधा कहा जाता है कोई एक बार सुन ले और उसको हमेशा के लिए धारण कर ले, तो ग्रंथार्थ धारण शक्ति मेधा। एक किसी का प्रवचन सुन लिया और 15-20 साल बाद कोई आया फिर प्रवचन करने के लिए, और फिर मान लो उसी वही विषय उसको दिया, तो उसका निचोड़ तो उसने पहले बता ही दिया था, फिर जो अपना एक ग्रंथ पर विचार होता है प्रवक्ता का, चिंतन होता है, वही ना बताता है प्रवक्ता। तो 20 साल पहले सुना हुआ भी आपको यदि मेधा संपन्न है श्रोता, तो आएगा कि आप ये तो इन्होंने 20 साल पहले भी इस विषय पर ऐसा ही बोला था, यही बोला था, वैसा वैसा। यदि मेधा है तो माना जाता है मेधावी व्यक्ति एक बार किसी का कुछ सुन लेता है वो याद रखता है, वैसा का वैसा रिकॉर्ड हो जाता है बुद्धि में, उसे सीढ़ी सुनने की जरूरत नहीं पड़ती लेकर के। वही रिकॉर्डिंग मशीन है उसकी बुद्धि। तो ये जितना बाह्य पदार्थों से संसर्ग रहित बुद्धि होगी उतनी ज्यादा मेधावी होगी। तो पहले प्रपंच कम लोगों में होता था और वेद और वेदानुसारी जीवन ज्यादा होता था। तो क्योंकि आवश्यकता ही भौतिक जीवन की अपने ऋषि मुनियों ने वैसी ही रखी थी। वो क्या कहते स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना ऊंचा उठाया ही नहीं था कि जिसके कारण जीवन का बहुत सा हिस्सा और बुद्धि का बुद्धि की शक्ति भी खर्च उसी लेवल पे अपना जीवन बनाए रखने के लिए या ऊंचा उठाने के लिए ही खर्च करना पड़े, विचार करना पड़े। तो फिर वेद उनको आचार्य ने सुनाया और वैसा का वैसा बुद्धि में धारित हो जाता था पहले। इसलिए वेद का नाम है श्रुति। ईश्वर ने कोई भोजपत्र पर लिख करके या किसी कागज पर लिख करके ब्रह्मा जी को वेद नहीं दिए थे। जो ये कहा जाता है ना, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। तो पूर्वम यानी संसार जब बनाना शुरू कर दिया परमात्मा ने तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को बनाया और उनको वेद दिए। तो वेद दिए तो वो ब्रह्मा जी को जो वेद नामक ग्रंथ ईश्वर ने दिया वो कौन सी लाइब्रेरी में मिलेगा? अभी वो किसी लाइब्रेरी में नहीं है, वो ब्रह्मा जी की बुद्धि रूपी लाइब्रेरी में मिलेगा। पहले वो सुना ही जाता था, ऐसे अलग से ध्वन्यात्मक ही शब्द हुआ करता था। लिप्यात्मक शब्द तो बहुत बाद में आया, वो प्रतीक है। पहले प्रतीक तो बाद में आता है, चित्र तो बाद में खींचा जाएगा ना, मूर्तियां तो बाद में बनती हैं। पहले जिसका वो प्रतीक है वो विद्यमान होता है। तो ईश्वर ने पूरा का पूरा वेद, ध्वन्यात्मक वेद ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने अपने अथर्वादी जो मानस पुत्र है उनको ये सब परंपरा चलती रहती है। तो ध्वन्यात्मक ही शब्द चलता था, व्यवहार चलता था। बाद में फिर ये शुरू हुआ कि मेधा कम होने लगी तो ऋषियों ने लिखना शुरू कर दिया। भोजपत्र आदि में जंगल में उपलब्ध होते थे, भोज नाम का पेड़ होता है ना, उसके उसकी छाल निकालते थे, उस पर लिखते थे चंदन से किसी किसी से। धीरे धीरे शाही आदि का आविष्कार हुआ, अब प्रेस। तो ये हुआ लिप्यात्मक शब्द, वर्णात्मक शब्द, ऐसे दो प्रकार के शब्द हैं। उनमें से वेद का और वेदांग का अर्थ है, ये मुख्य रूप से वेद तो है ध्वन्यात्मक ही और लिपि बाद में। तो तो ये वेद शब्द राशि है, ध्वन्यात्मक शब्द राशि। और ये शिक्षा कल्प ये भी ग्रंथ है ऋषि मुनियों के द्वारा प्रणीत, इनको कहा जाता है अंग वेदों के। वेदों को समझने के लिए इन शिक्षादियों को समझना जरूरी है, वेद राशि को समझने के लिए भी। तो शिक्षा ये बताती है कि कौन से ध्वन्यात्मक वर्ण का कहां से उच्चारण होगा, कैसे उच्चारण होगा, उनका क्या प्रयत्न करने से होगा, वो कई एक होते हैं प्रयत्न स्थान आदि। और कल्प, कल्प कहा जाता है सूत्रात्मक ग्रंथों को, वो कात्यायन आदि ऋषियों ने लिखे हैं। वेद मंत्रों का कौन से कर्म में किस प्रकार का उपयोग होगा और कर्म का अनुष्ठान किस क्रम से होगा, इन सब का वर्णन वेदों में कर्म का स्वरूप बताया गया। लेकिन अनुष्ठान का क्रम और कौन से कर्म का अनुष्ठान करते समय कौन से मंत्रों का उपयोग करना है, ये सब जानकारी आपको उपलब्ध होगी कल्प ग्रंथों से। तो कल्प ये भी एक वेद का अंग है, और व्याकरण इसे माना जाता है वेद का मुख, वो पाणिनि आदि के पाणिनि आदि ऋषियों के द्वारा प्रणीत, पाणिनि जी के व्याकरण लिखने के पहले भी कई एक व्याकरण ग्रंथ थे अन्य अन्य ऋषियों के, वो व्याकरण निरुक्त व्याकरण है एक प्रकार से संस्कृत ग्रामर, और निरुक्त वो भी ध्वन्यात्मक शब्दों के विषय में ही कौन सा वर्ण कहां पर कैसे प्रयुक्त होगा, कहां क्या रूप उसका बदलेगा, ये सब वर्णन होता है निरुक्त में। और छंद होते हैं मंत्र में, वैदिक सात छंद प्रसिद्ध हैं, अनुष्टुप जगति पंक्ति आदि, और लौकिक छंद तो बहुत हैं, तो उन छंदों का लक्षण आदि बताने वाला ग्रंथ माना जाता है छंद। और ज्योतिष काल निर्णय करने वाला, और ये छह वेदांग तथा चारों वेद ये क्या है, तो कहते अपरा विद्या है। तत्र यानी दो प्रकार की विद्याओं में से अपरा विद्या समझना षडंग सहित चारों वेदों को, शब्द राशि को। तो परा कौन सी है फिर, अपरा विद्या तो हो गई ये सारे वेद उनके अंग। अपरा विद्या बताते हैं कि अथ, ये अपरा विद्या हुई तो अथ परा, इसमें अथ शब्द है परा विद्या के स्वरूप को बताने के लिए प्रारंभ बताने वाला, यानी अपरा विद्या पूरी हुई इति शब्द ने बताया, और ये भी खाली लक्षण मात्र पूरा हुआ है, इन इनको आप अपरा विद्या समझो। और परा विद्या तो कहते हैं अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, तो परा विद्या वह है जिस विद्या से उस अक्षर की प्राप्ति होती है। अक्षर शब्द एक होने पर भी उसके कई अर्थ हैं, अक्षर शब्द वर्ण के लिए भी आता है, वर्णमाला के लिए अक्षरमाला भी कहा जाता है, अ उ इसको वर्ण भी कहते हैं अक्षर भी कहते हैं। यहां अक्षर शब्द का अर्थ वे वर्ण नहीं समझना, अक्षर शब्द अव्याकृत के लिए भी आएगा यानी अविद्या के लिए भी माया के लिए। व्यास जी ने गीता में 15वें अध्याय में एक अक्षर शब्द का प्रयोग किया माया के लिए, दो तीन पुरुष वहां पर बताए, पहले दो द्वायुमो पुरुषो लोके क्षरस चाक्षर एवच, एक क्षर पुरुष दूसरा अक्षर पुरुष और तीसरा है पुरुषोत्तम। अक्षर शब्द का अर्थ वहां पर शंकराचार्य जी ने किया माया, इसलिए अक्षर शब्द का अर्थ माया भी होगा। मुंडक उपनिषद में भी अक्षर शब्द माया के लिए भी आएगा, और यहां पर भी एक अक्षर शब्द आया मुंडक उपनिषद में, ये अक्षर शब्द परमात्मा के लिए है। इसलिए अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, इसमें अक्षर शब्द का अर्थ है परमात्मा ब्रह्म, जिसे गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम कहा, उसके लिए यहां अक्षर शब्द है। तो उस पुरुषोत्तम की प्राप्ति गीता के 15वें अध्याय के यानी जिस विद्या से हो, उस विद्या का नाम है पराविद्या, उसे पराविद्या कहा जाता है। ये पराविद्या का संक्षिप्त लक्षण हुआ कि जो विद्या आपको परमात्मा की प्राप्ति करा दे वह पराविद्या, और अपराविद्या ये षडंग चारों वेद हुए। वेद के लिए गीता में कहा गया त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। तो वेद तो त्रैगुण्य है, त्रैगुण्य का अर्थ होता है त्रिगुण सत्व रज तम, और इन तीनों गुणों का जो विकार है परिणाम है उसे त्रैगुण्य कहा जाता है। तो तीनों गुणों का परिणाम है ये संसार, ऐहिक पारलौकिक पृथ्वी लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत का जो संसार है उसे माना गया त्रैगुण्य। तो वेदा त्रैगुण्य विषया, तो वेद गुणत्रय को ही विषय बनाते हैं, साध्य साधन रूप संसार को विषय बनाते हैं। तो जिस ग्रंथ का जो विषय है माना जाता है वही उसका प्रतिपाद्य है, इसलिए शब्द राशि रूप वेद का वाच्यार्थ ये त्रिगुणों का विकार रूप संसार ही है, वे संसार के प्रतिपादक है शब्द राशि। और संसार का अर्थ है एक शब्द में भी संसार को बताना होगा तो वेदांति कहते हैं नाम रूप, ये संसार है ना, नाम रूप संसार है, और परमात्मा नाम रूपातीत है। और वेद क्या है, स्वयं वो शब्दात्मक है, इसलिए और शब्द का मतलब नाम और रूप का अर्थ होता है उसका अर्थ वाच्यार्थ। तो वेद स्वयं नामात्मक है और उसका वाच्यार्थ वो हो जाएगा रूप, इसलिए वेदों को व्यास जी ने गीता में कहा कि त्रैगुण्य विषया वेदा। और हे अर्जुन तुम तो क्या करो, निस्त्रैगुण्यो भव, तुम निस्त्रैगुण्य हो जाओ, का मतलब ये जो नाम रूपात्मक संसार है उससे ऊपर उड़ जाओ, वाच्य वाचक भाव से ऊपर उड़ जाओ। और जिस अक्षर की प्राप्ति यहां पर बताई जा रही है पराविद्या से, वह अक्षर तत्व किसी भी नाम का वाच्य नहीं है, वेद का भी वाच्य नहीं है, इसलिए वेद स्वयं उसे कहता है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यद वाचा अनभ्युद्यतम येन वाग अभ्युद्यते, कि जिससे शब्द अपना विषय बनाए बिना ही वापस लौट आता है, का मतलब शब्द से आप उसके शक्यार्थ को जान सकते हैं, वाच्यार्थ को जान सकते हैं, और ब्रह्म तो वाच्यार्थ नहीं है, उसे यहां पर अक्षर शब्द से कहा जा रहा है। और इस अक्षर शब्द की चर्चा हम लोग कल भी करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। शांति शांति ही।